ऑडियो पिटारा प्रस्तुत करता है मेपल प्रेस द्वारा प्रकाशित बुक्स, जिन्हें सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से रिकॉर्ड किया गया है। ये कहानियाँ शिक्षाप्रद और मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित हैं, लेकिन इनका उद्देश्य किसी भी नैतिक या सामाजिक संदेश को प्रचारित करना नहीं है। ऑडियो पिटारा इसके लिए किसी भी प्रकार की जिम्मेदारी नहीं लेता है। प्रत्येक श्रोता या सुनने वाले को सलाह दी जाती है कि वे इन कहानियों को सिर्फ मनोरंजन के लिए ही सुने और नैतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से अपनी विवेकशीलता के संदर्भ में समझें।
ऑडियो पिटारा, सुनना जरूरी है।
सादत हसन मंटो का फसाना, तकी कातिब। वली मोहम्मद जब तकी को पहली मर्तबा दफ्तर में लाया तो इसने मुझे कतई मुतासिर ना किया। लखनऊ और वली के जाहिल और खुद सर कातिबों से मेरा जी जला हुआ था। एक था उसको जावा बेजा पेश डालने की बुरी आदत थी, मौत को मूत और सोत को सूत बना देता था। मैंने बहुत समझाया मगर वो ना समझा। उसको अपने अहले जबान होने का बहुत जोम था। मैंने जब भी उसको पेशे मामला में टोका, उसने अपनी दाढ़ी को ताव देकर कहा, मैं अहले जबान हूँ साहब, इसके 30 सिपारों का हाफिज हूँ, ऐराब के मामला में आप मुझसे कुछ नहीं कह सकते। मैंने उसे और कुछ ना कहा और रुखसत कर दिया। उसकी जगह एक दिल्ली के कातिब ने ले ली और सब ठीक हो गया, मगर उसको इस्लाह करने का खंबत था और इस्लाह भी ऐसी कि मेरी आंखों में खून उतर आता था। कोई मजमून था, मैंने उसमें ये लिखा, उसके हाथों के तोते उड़ गए। उसने ये इस्लाह फरमाई, उसके हाथ पांव के तोते उड़ गए। मैंने उसका मजाक उड़ाया तो वो खालिस दहलवी लबो लहजा में बड़बड़ाता मुलाजमत से अलहैदा हो गया। रामपुर का एक कातिब था, बहुत ही खुशखत था, मगर उसको इक्तिसार के दौरे पड़ते थे। सत्रें के सत्रें और पैरे के पैरे गायब करता था। जब उसको पूरा सफा दोबारा लिखने को कहता तो वो जवाब देता, इतनी मेहनत मुझसे ना होगी साहब, पॉट में लिख दूंगा। पॉट में लिखवाना मुझे सख्त नापसंद था। चुनाचे रामपुरी कातिब भी ज्यादा दिन दफ्तर में टिक ना सके। वली मोहम्मद हेड कातिब जब तकी को पहली मर्तबा दफ्तर में लाया तो उसने मुझे कतई मुतासिर ना किया। खत का नमूना देखा, खास अच्छा नहीं था, दायरों में पुख्तगी ही ना थी। मैं गुंजान लिखाई का कायल हूँ, वो छदरा लिखता था, कम उम्र था, अंदाजे गुफ्तगू में अजीब किस्म की बौखलाहट थी। बात करते वक्त उसका एक बाजू हिलता रहता जैसे क्लॉक का पेंडुलम। रंग सफेद था, बालाई होठ पर भूरे भूरे भिन्न बाल थे। ऐसा मालूम होता था कि इसने खुद किताब की स्याही से ही हल्की हल्की मूछें बनाई हैं। मैंने उसे चंद रोज के लिए रखा, मगर उसने अपनी शराफत, मेहनत और ताबेदारी से दफ्तर में अपने लिए मुस्तकिल जगह पैदा कर ली। वली मोहम्मद से मेरे ताल्लुकात बहुत बेतकल्लुफ थे। जीनीसियात के मुतल्लिक अपनी मालूमात में इजाफा करने के लिए वो अक्सर मुझसे गुफ्तगू किया करता। इस दौरान मैं मोहम्मद तकी खामोश रहता। औरत और मर्द के जिंसी ताल्लुक का जिक्र खुले अल्फाज में आता तो उसके कान की लरवें सुर्ख हो जाती। वली मोहम्मद जो कि शादीशुदा था, उसको खालिस पंजाबी अंदाज में छेड़ता, मंटो साहब इसका मुर्दा खराब हो रहा है, इससे कहिए कि शादी कर ले। जब भी कोई फिल्म देख कर आता, सारी रात करवटे बदलता रहता। कि आम तौर पर झेपते हुए कहता, मंटो साहब झूठ बोलता है। वली मोहम्मद की स्याह नुकीली मूछे थिरकने लगी, और ये भी झूठ है मंटो साहब कि ये चाली बिल्डिंग की यहूदी छोकरियों की नंगी टांगे देखकर उनकी नक्शाकशी किया करता है। अरे मैं तो ड्राइंग सीख रहा हूँ। वली मोहम्मद उसे और छेड़ता, ड्राइंग चेहरे की सीखो, ये किस ड्राइंग हिस्टर ने तुमसे कहा है कि पहले नंगी टांगों से शुरू करो। मोहम्मद तकी करीब करीब रो देता। चुनाचे मैं वली मोहम्मद को मना करता कि वो उसे ना छेड़ा करे। इस पर वली मोहम्मद कहता, मंटो साहब मैं इसके वालिद साहब से कह चुका हूँ और आपसे भी कहता हूँ कि इस लौंडे की शादी करा दीजिए, वरना इसका मुर्दा बिल्कुल खराब हो जाएगा। मोहम्मद तकी के बाप से मेरी मुलाकात हुई। दाढ़ी वाले बुजुर्ग थे, नमाज रोजे के पाबंद, माथे पर महिरब। झंडी बाजार में वली मोहम्मद की शीरा तक में घी की एक छोटी सी दुकान करते हैं। मोहम्मद तकी से उनको बहुत मोहब्बत थी। बातें करते हुए आपने मुझसे कहा, तकी 2 बरस का था कि उसकी वालिदा का इंतकाल हो गया। खुदा उसको गरी के रहमत करे, बहुत ही नेक बीबी थी। मंटो साहब, यकीन जानिए, उसकी मौत के बाद अजीजों और दोस्तों ने बहुत जोर दिया कि मैं दूसरी शादी कर लूं, मगर मुझे तकी का ख्याल था। मैंने सोचा हो सकता है कि मैं उसकी तरफ से गाफिल हो जाऊं। चुनाचे दूसरी शादी के ख्याल को मैंने अपने करीब तक आने नहीं दिया और उसकी परवरिश खुद अपने हाथों से की। अल्लाह का बड़ा फजल व करम है कि उसने मुझ गुनेगार को सुखरू किया। खुदा उसको जिंदगी और नेकी की हिदायत दे। मोहम्मद तकी अपने बाप के इस इसरार की हमेशा तारीफ किया करता है। बहुत कम बाप इतनी बड़ी कुर्बानी कर सकते हैं। अब्बा जवान थे, अच्छा खाते थे, चाहते तो चुटकियों में उनको अच्छी से अच्छी बीवी मिल जाती, लेकिन मेरी खातिर उन्होंने रूद की जिंदगी बसर की। इतनी मोहब्बत और इतने प्यार से मेरी परवरिश की कि मुझे माँ की कमी महसूस ही ना हुई। वली मोहम्मद भी तकी के बाप का मोतरिफ था, मगर उसे सिर्फ ये शिकायत थी कि मौलाना जरा सनकी है। मंटो साहब आदमी बहुत अच्छा है, कारोबार में बुलाने खरा है, तकी से बहुत प्यार करता है, लेकिन ये प्यार मैं अब अपने एहसासात किन अल्फाज में पेश करूं? इसका प्यार हद से बड़ा हुआ है, यानी वो इस तरह प्यार करता है जिस तरह कोई हासिद आशिक अपने माशूक से करता है। जब वली मोहम्मद से पूछा कि तुम्हारा मतलब, तो वली मोहम्मद ने अपनी मूंछों की नोकों को दुरुस्त किया। मतलब मैं नहीं समझा सकता, आप खुद समझ लीजिए, मैंने मुस्कुरा कहा। भाई तुम जरा वजाहत से काम लो तो मैं समझ जाऊं। वली मोहम्मद ने सुर्खियां लिखने वाले कलम को कपड़े के चीथड़े से साफ करते हुए कहा, मौलाना सनकी है, मुझे मालूम नहीं क्यों। तकी कहता है कि पहले उनके प्यार और उनकी शफकत का ये रंग नहीं था जो अब है, यानी पिछले चंद बरसों से आपने अपने फर्जत अर्जुमन से पूछ गाछ का लामत नाही सिलसिला शुरू कर रखा है। मुतनाही ठीक इस्तेमाल है ना मंटो साहब? ठीक इस्तेमाल हुआ है, हाँ ये पूछ गछ का सिलसिला किया है। यही कि तुम रात को देर से क्यों आए, सफेद गली में क्या करने गए थे, वो यहूदन तुमसे क्या बात कर रही थी, इतने फिल्म क्यों देखते हो, पिछले हफ्ते तुम किताब की उजरत में से 4 आने कहाँ रखे। वली मोहम्मद से तुम बाई कालिमा के पोल पर बैठ कर क्या बात कर रहे थे, क्या वो तुम्हें वरगला तो नहीं रहा था कि शादी कर लो। मैंने वली मोहम्मद से पूछा, वरगलाना क्या हुआ, मालूम नहीं, लेकिन मौलाना समझते हैं कि तकी का हर दोस्त उसे शादी के लिए वरगलाता है। मैं उसको वरगलाता तो नहीं, लेकिन ये जरूर कहता हूँ और अक्सर कहता हूँ कि जाने मन शादी कर लो, वरना तुम्हारा मुर्दा खराब हो जाएगा। और मंटो साहब, मैं आपको खुदा की कसम खाकर कहता हूँ कि लड़के को एक आदत बीवी की अशद जरूरत है। 4-5 बरस गुजर चुके थे। मोहम्मद तकी की मूंछों के भूरे बाल अब महीन नहीं थे, हर रोज दाढ़ी मूंडता था और टेढ़ी मांग भी निकालता था, और दफ्तर में जब जिस बात के मुतल्ले गुफ्तगू छिड़ती थी तो वो कलम दांतों में दबाकर गौर से सुनता था। औरत और मर्द के जिनसे ताल्लुक का जिक्र खुले अल्फाज में होता तो उसके कानों की लर्वे सुर्ख ना होती। मोहम्मद तकी को बीवी की जरूरत हो सकती थी। एक दिन जबकि और कोई दफ्तर में नहीं आया था और अकेला तकी तख्त पर दीवार के साथ पीठ लगाए पर्चे की आखिरी कॉपी मुकम्मल कर रहा था, मैंने उसके खदो खाल का गौर से मुआयना किया। तकी तुम शादी क्यों नहीं करते, सवाल अचानक किया गया था। तकी चौंक पड़ा, जी मेरा ख्याल है तुम शादी कर लो। तकी ने कलम कान में अड़सा और किसी कदर शर्म कर रहा था। मैंने इस बारे में अब्बा से बात की है, क्या कहा उन्होंने। तकी तफसील से कुछ कहना चाहता था मगर कह ना सका। जी कुछ नहीं, वो कहते हैं कि अभी इतनी जल्दी क्या है, तुम्हारा क्या ख्याल है। जो उनका है। इस जवाब के बाद गुफ्तगू का सिलसिला मुनक्ते हो गया। तकी ने पर्चे की आखिरी कॉपी मुकम्मल की और उसे जोड़कर चला गया। चंद दिन के बाद वली मोहम्मद ने तकी की मौजूदगी में मुझसे कहा, मंटो साहब कल बड़ा लफड़ा हुआ, मौलाना और तकी में धी पटास होते होते रह गई। वली मोहम्मद यूं तो उर्दू बोलता था, लेकिन पंजाबी और बंबई की उर्दू के कई अल्फाज मदा पैदा करने के लिए इस्तेमाल करने का आदी था। तकी ने उसकी बात सुनी और खामोश रहा। वली मोहम्मद ने अपनी थिरकती हुई नोकीली मूछों को आंखों का जाविये बदल कर देखा, फिर उस जाविये को बदल इसने तकी की तरफ देखा, और मुझसे कहा, लड़के को एक अदद बीवी की अशद जरूरत है, लेकिन बाप इसकी जरूरत को नहीं मानता। इसने बहुत समझाया मंटो साहब, मगर मौलाना ने एक ना सुनी। मंटो साहब, ये क्या मुहावरा है, ना सुनी। मौलाना ने सुनी तो हजार थी, लेकिन सुनी अनसुनी कर दी। ये मुहावरे भी खूब चीज हैं, और मौलाना भी। अपने वक्त का एक लाजवाब मुहावरा है, तकी भुना कर मुझसे मुख्तात हुआ। मंटो साहब इससे कहिए खामोश रहे। वली मोहम्मद बोला, मंटो साहब इससे कहिए कि मौलाना के सामने खामोश रहा करे, वो शादी की इजाजत नहीं देते। ठीक है, बाप है, वो इसका नफा नुकसान सोच सकते हैं। बाप बेटे की चीख जरूर हुई थी। तकी ने मौलाना से दरख्वास्त की थी कि वो उसकी शादी किसी अच्छे घराने में कर दे। ये सुनकर वो चिढ़ गए और तकी के दोस्तों पर बरसने लगे। तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारी जड़ों में पानी फेर दिया है। जब मैं तुम्हारी उम्र का था, मुझे मालूम ही नहीं था कि शादी ब्याह किस जानवर का नाम है। ये सुनकर तकी ने डरते डरते कहा, ले आपकी शादी तो 14 बरस की उम्र में हुई थी। मौलाना ने उसे डांटा, तुम्हें क्या मालूम है। तकी खामोश हो गया। वो बहुत ही कमगो और फरमाबरदार किस्म का लड़का था। 2-4 मर्तबा उससे बेतकल्लुफ गुफ्तगू की और उसके खुलने का मौका दिया तो मुझे मालूम हुआ कि उसको बीवी की वाकई जरूरत है। उसने मुझसे एक रोज छिपते हुए कहा, मेरे ख्यालात आजकल बहुत परागंदे रहते हैं। वली मोहम्मद शादीशुदा है, वो जब अपनी बीवी के साथ बाहर जाता है तो मेरे दिल को न जाने क्या होता है। आपने एक दफा एहसासे कमतरी के मुतल्लिक बातें की थी। मुझे ऐसा महसूस होता है कि मैं अनकरीब इसका शिकार होने वाला हूँ, मगर क्या करूँ, अब्बा मानते ही नहीं। मैं शादी की बात करता हूँ तो वो चिढ़ जाते हैं, जैसे शादी करना कोई गुनाह है। वो अपनी मिसाल देते हुए कि देखो, तुम्हारी माँ के मरने के बाद अब तक मैंने शादी नहीं की। लेकिन मंटो साहब, इस मिसाल का मेरे साथ क्या ताल्लुक। उन्होंने शादी की, अल्लाह को ये मंजूर नहीं था कि उनकी बीवी जिंदा रहती। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी की जो मेरी खातिर दूसरी शादी ना की, लेकिन वो चाहते हैं कि मैं कुवारा रहूं। मैंने पूछा क्यों। तकी ने जवाब दिया, मालूम नहीं मंटो साहब, वो मेरी शादी के बारे में कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन कल बातों बातों में जज्बात से मगलूब होकर गुस्ताखी कर बैठा। क्या, तकी ने इंतहाई नदामत के साथ कहा, मैं मिन्नत समाजत करते करते और समझाते समझाते तंग आ गया था। कल जब उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरी शादी के मुतल्लिक कुछ सुनने को तैयार नहीं है, तो मैंने गुस्से में आकर उनसे कह दिया, आप नहीं सुनोगे तो मैं अपनी शादी का बंदोबस्त खुद कर लूंगा। मैंने तकी से पूछा, ये सुनकर उन्होंने क्या कहा, अभी घर से निकल जाओ। चुनांचे कल रात मैं यहाँ दफ्तर में ही सोया। मैंने शाम को वली मोहम्मद के जरिए से मौलाना को बुलवाया। चंद जज्बाती बातें हुई तो उन्होंने तकी को गले से लगाकर रोना शुरू कर दिया। फिर शिकवे होने लगे। मुझे मालूम नहीं होता कि ये लड़का, जिसकी खातिर मैंने तजर्रुद बर्दाश्त किया, एक रोज मेरे साथ ऐसी गुस्ताखी से पेश आएगा। मैंने माओ की तरह उसे पाला पोसा, आप सूखी खाई, पर इसके लिए खुद अपने हाथों से घी में गूंद गूंद कर पराठे पकाए। मैंने बाट काट कर कहा, मौलाना ये कब आपके इन एहसानात को नहीं मानता। आपकी तमाम कुर्बानियां इसके दिलो दिमाग पर नक्श हैं। आपने इतना कुछ किया है, क्या आप उसकी शादी नहीं कर सकते। माँ बाप की तो सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है कि वो अपनी औलाद को फलता फूलता देखें। आपके घर में बहू आएगी, बाल बच्चे होंगे, दादा जान बनकर आपको पुरफख मुसरत ना होगी। मेरा ख्याल है तकी को गलतफहमी हुई है कि आप शादी के खिलाफ हैं। मौलाना लाजवाब हो गए, रुमाल से अपनी आंखें खुश्क करने लगे। थोड़े तवक्कुफ के बाद बोले, पर कोई ऐसा रिश्ता हो तो आप हाँ कर दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वली मोहम्मद ने ये कुछ ऐसे अंदाज में कहा, चलिए अंगूठा लगाइए। मौलाना बदल गए, लेकिन ऐसी जल्दी भी क्या है। इस पर मैंने बुजुर्गों का अंदाज इख्तियार करते हुए कहा, कार्य खैर में देर नहीं होना चाहिए। आप औरों को छोड़िए, खुद अपनी पसंद का रिश्ता ढूंढिए। माशा अल्लाह डुंगरी में सब लोग आपको जानते हैं। यहाँ बंबई में पसंद ना हो तो अपने पंजाब से सही, कौन सा गाले को सो दूर है। मौलाना ने सिर हिलाकर सिर्फ इतना कहा, जी हाँ। मैंने तकी के कंधे पर हाथ रखा, लो भाई तकी, फैसला हो गया। मौलाना को तुम जिद्दी बच्चों की तरह अब तंग ना करना, मैं खुद इस मामले में इनकी मदद करूंगा। ये कहकर मैं मौलाना से मुखातिब हुआ। यहाँ कुछ खानदान है, उनसे मेरी जान पहचान है। मैं अपनी बीवी से कहूंगा कि वो लड़कियां देख लेगी। तकी ने हौले से कहा, आपकी बहुत मेहरबानी। कई महीने गुजर गए मगर तकी की शादी की बातचीत कहीं शुरू ना हुई। वली मोहम्मद इस दौरान में उसे बराबर उकसाता रहा, वो अपने बाप के पीछे पड़ा। नतीजा ये हुआ कि एक रोज मौलाना मेरे पास आए और कहा, सांगटी स्ट्रीट की तीसरी गली के नुक्कड़ की बिल्डिंग में शायद आप जानते ही हों, यूपी का एक खानदान रहता है। मैंने फौरन कहा, आप कहिए, मैं जानता हूँ। मौलाना ने पूछा, कैसे लोग हैं? बेहद शरीफ। जो सबसे बड़ा भाई है उसकी बड़ी लड़की, मैंने सुना है कि खासी अच्छी है। मैं पैगाम भिजवा देता हूँ। मौलाना घबरा गए, नहीं नहीं इतनी जल्दी नहीं, ये भी तो देखना है कि लड़की शक्ल और सूरत से कैसी है। मैं अपनी बीवी के जरिए ये मालूम कर लूंगा। मेरी बीवी ने उस लड़की को देखा तो पसंद किया, कबूल सूरत थी, तालीम एंट्रेंस तक की, तबीयत की बहुत ही अच्छी थी। ये सब खूबियां मौलाना से बयां कर दी गई। वो लड़की के बाप से मिलने, जहेज और हक महर के मुतल्लिक बातचीत हुई। ये इब्तिदाई मराहिल बेखार और खूबी तय हो गए। तकी बहुत खुश हुआ, लेकिन 3 महीने गुजर गए और बात वहीं की वहीं रही। आखिर एक रोज मालूम हुआ कि लड़की वालों ने मजीद गुफ्तगू से इनकार कर दिया है, क्योंकि वो तकी के बाप की मैन मीक से तंग आ चुके थे। बार बार वो उनसे जा जाकर ये कहता, देखिए इतने जोड़े हों, बर्तनों की तादाद ये हो, लड़की ने अगर मेरी हुक्म अदूली की तो उसकी सजा तलाक होगी, फिल्म देखने हर किस न जाएगी, पर्दे में रहेगी। मैंने जब इन बेजा बातों का जिक्र तकी से किया तो वो अपने बाप की तरफ हो गया। नहीं मंटो साहब, लड़की वाले ठीक नहीं। अब्बा का ये कहना ठीक है कि वो मुझे रन मुरीद बनाना चाहते हैं। मैंने कहा, ऐसा है तो छोड़ो, किसी और जगह सही। तकी ने कहा, अब्बा कोशिश कर रहे हैं। मौलाना ने डूंगरी में अपने एक वाकिफ कार के जरिए बातचीत शुरू की। सब कुछ तय हो गया, निकाह की तारीख भी मुकर्रर हो गई, मगर एकदम कुछ हुआ और सब कुछ ढह गया। लड़की वालों को तकी पसंद था, लेकिन जब मौलाना से अच्छी तरह मिलने जुलने का इत्तेफाक हुआ तो वो पीछे हट गए और लड़की का रिश्ता किसी और जगह पक्का कर दिया। तकी ने फिर अपने बाप की तरफदारी की और मुझसे कहा, ये लोग बड़े लालची थे मंटो साहब, एक दौलतमंद का लड़का मिल गया तो अपनी बात से फिर गए। अब्बा शुरू से ही कहते थे कि ये लोग मुझे ईमानदार मालूम नहीं होते, लेकिन मैं खामखां उनके पीछे पड़ा रहा कि जल्दी मुआमला तय कीजिए। कुछ अरसे बाद तीसरी जगह कोशिश शुरू की, यहाँ भी नतीजा 0। चौथी जगह बातचीत शुरू हुई तो तकी ने मुझसे कहा, मंटो साहब वो लोग आपसे मिलना चाहते हैं, बड़े शौक से मिले। मैं उनसे मिला, आदमी शरीफ थे। मौलाना से उनकी चंद मुख्तसर बातें हुई, मैंने तकी की तारीफ की, मामला तय हो गया। लेकिन चंद ही दिनों में गड़बड़ पैदा हो गई। लड़की के बड़े भाई ने किसी से सुना कि मौलाना दुकान पर अपने दोस्त से कह रहा था, लड़की मेरे कहने पर ना चली तो मैं तकी की दूसरी शादी कर दूंगा। वो ये सुनकर मेरे पास आया। मैंने मौलाना को बुलवाया, उनसे पूछा तो दाढ़ी पर हाथ फेर कर कहने लगे, मैंने क्या बुरा कहा, मैं ऐसी बहू घर नहीं लाना चाहता जो मेरा कहना ना माने। मैं तकी की शादी इसलिए कर रहा हूँ कि मुझे आराम पहुँचे। अजीबोगरीब मतिक थी। मैंने पूछा, आपको आराम जरूर पहुंचना चाहिए, मगर आपकी ये मतिक मेरी समझ में नहीं आई। ऐसा मालूम होता है कि खाविंद और बीवी का रिश्ता आपकी समझ से बलातर है। मौलाना ने किसी कदर खफगनी के साथ कहा, मैं खाविंद रह चुका हूं मंटो साहब, आपके ख्यालात मेरे ख्यालात से बहुत मुख्तलिफ हैं। आपके साथ काम करके मुझे अफसोस है, मेरे लड़के के ख्यालात भी बदल गए हैं। ये कहकर वो तकी से मुखातिब हुए। सुना तुमने, मैं ऐसी लड़की घर में लाना चाहता हूँ जो मेरी और तुम्हारी खिदमत करे। इसके बाद देर तक बातें होती रही। उनसे जो मैंने नतीजा निकाला वो मैंने तकी को बताया। देखो भाई, बात यह है कि तुम्हारे वालिद साहब तुम्हारी शादी नहीं करना चाहते। यही वजह है कि वो हर बार कोई ना कोई शोशा छेड़ देते हैं, कोई ना कोई बहाना ढूंढ निकालते हैं ताकि मामला आगे ना बढ़ पाए। मौलाना खामोश अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते रहे। तकी ने मुझसे पूछा, क्यों, ये मेरी शादी क्यों नहीं कराना चाहते? मेरे मुंह से बेख्तियार निकल गया, मौलाना का दिमाग खराब है। मौलाना को इस कदर तैश आया कि मुंह में झाग भरकर वाही तबाही बकने लगा। मैंने तकी से कहा, जाओ मौलाना को किसी जहनी शिफाखाना में ले जाओ और मेरी ये बात याद रखूं, जब तक इनका दिमाग दुरुस्त नहीं होगा तुम्हारी शादी हरगिज हरगिज नहीं करेंगे। उनके दिमाग की खराबी का बायस वो कुर्बानी है जो इन्होंने तुम्हारे लिए की। मौलाना ने तकी का बाजू जोर से पकड़ा और मुझे सलावती सुनाते चले गए। वली मोहम्मद मेरे पास बैठा सब कुछ खामोशी से सुन रहा था। इतनी देर में वो अपनी नोकेली मूछों के वजूद से बिल्कुल गाफिल रहा। जब मौलाना और तकी चले गए तो उसने आंखों की जावियां दुरुस्त करके उनकी तरफ देखा और कहा, मुर्दा खराब हो रहा है बेचारे का, लेकिन मंटो साहब आपने 52 तोला और 52 रत्ती की बात कही है। मुहावरा दुरुस्त इस्तेमाल हुआ है ना, तुमने मुहावरा दुरुस्त इस्तेमाल किया है, लेकिन अफसोस है कि मौलाना की तबीयत साफ करते हुए मैंने मुनासिब व मौजू अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। बड़ा मलऊन आदमी है, वली मोहम्मद ने ये कहकर अपनी मूछ का हटीला बाल बड़े जोर से उखेड़ते हुए और बड़ी संजीदगी इख्तियार करके मुझसे पूछा, मंटो साहब क्या मतलब था आपका इससे कि मौलाना के दिमाग की खराबी का बायस वो कुर्बानी है जो उसने तकी के लिए की। बात जरूर 52 तोला और 52 रत्ती की है, लेकिन पूरी तरह मेरे जहन में नहीं बैठी। मैंने उसको समझाया, एक वक्ती जज्बा था जिसके तहत मौलाना ने तजरुद के दिन गुजारने का तय किया। ये जज्बा अपनी तिब्बी मौत मरा तो आपके लिए 2 सोग हो गए, एक बीवी की मौत का, दूसरा इस जज्बे की मौत का। वक्त गुजरता गया और मौलाना नीम के करेले बनते गए। मुझे तो भाई वली मोहम्मद बहुत तरस आता है गरीब पर। एक शख्स जिसने 25 बरस तक अपने और औरत के दरमियान एक दीवार हायल रखी हो, वो किस तरह अपने जवान बेटे के पहलू में एक जवान औरत देख सकता है, और वो भी नजरों के बहुत करीब। दूसरे दिन तकी आया। वली मोहम्मद के हाथ उसने किताबत का बल भिजवा दिया। तकी को बहुत अफसोस था कि मैंने उसके बाप को बुरा भला कहा। मैंने वली मोहम्मद से कह दिया, मुझे कोई अफसोस नहीं है। तकी को मालूम होना चाहिए था कि उसका बाप जहनी और रूहानी तौर पर बीमार है, लेकिन मुझे ये अफसोस जरूर है कि उसने काम छोड़ दिया है। वली मोहम्मद ने तकी से वापस आने को कहा, मगर वो ना माना। उसने किसी और दफ्तर में मुलाजमत ना की और दुकान पर बैठकर ही घी बेचने लगा। वली मोहम्मद ने जब जोर दिया तो इसने वही किताबत का काम शुरू कर दिया। मैं एक काम से दिल्ली चला गया, 3-4 महीने वहां रहा, बंबई लौटा तो वली मोहम्मद ने प्लेटफॉर्म पर ही ये खबर सुनाई कि तकी की शादी 1 हफ्ता पहले बखैर खूबी हो चुकी है। मुझे यकीन ना आया। वली मोहम्मद ने कुरान की कसम खाकर कहा, मंटो साहब मैं झूठ नहीं कहता, निकाह के छुआरे मैंने संभाल कर रखे हुए हैं, जिसकी शादी ना होती हो इसके लिए अक्सीर साबित होंगे। मैंने तकी को बुलाया मगर वो ना आया। तकरीबन 1.5 महीने के बाद एक दिन अल सुबह वली मोहम्मद आया। उसकी नोकीली मूछें थिरक रही थी। कहने लगा, मंटो साहब कल धी पटास हो गई बाप बेटे में, तकी अपनी बीवी को लेकर चला गया कहीं। कहां मालूम नहीं, ये कहकर आंखों का जावियां बदल कर वली मोहम्मद ने अपनी नोकीली मूछों को देखा। कुछ समझ में नहीं आता था, मंटो साहब आई का बाइस मालूम ना हो सका। मौलाना बहुत देर तक खामोश रहे। उनका बेटा मोहम्मद तकी भी बंबई में वली मोहम्मद और उसके साथियों ने तकी को बहुत तलाश किया मगर उसका कोई सुराग ना मिला। बहुत दिनों के बाद दिल्ली से मुझे तकी का एक खत मिला। लिखा था, बहुत दिनों से सोच रहा था कि आपको खत लिखूं और हालात से आगाह करूं, मगर जरूरत साथ न देती। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं कि ये खत किसी और को ना दिखाइएगा। आपने मेरे वालिद के मुतल्लिक जो कुछ कहा ठीक निकला। मैंने आपकी बातों का बुरा माना था इसलिए कि मुझे असलियत का इल्म नहीं था जो मुझे शादी के बाद मालूम हुई। मेरे वालिद का दिमाग वाकई दुरुस्त नहीं है, हो सकता है पहले ठीक हो, लेकिन मेरी शादी के बाद तो कतन उनकी दिमागी हालत दुरुस्त ना थी। उनकी यही कोशिश रहती कि मैं अपनी बीवी से दूर रहूं। मुझ और इसमें दूरी पैदा करने के लिए वो अजीबोगरीब तरीके इजाद करते थे जो एक दीवाना ही कर सकता है। मैंने बहुत देर तक बर्दाश्त किया। मुझे तमाम वाकियत बयान करते हुए बहुत शर्म महसूस होती है। एक रोज मेरी बीवी गुसलखाने में नहा रही थी, आपने दरवाजे से झांककर देखना शुरू कर दिया। मैं और क्या लिखूं, समझ में नहीं आता उनके दिमाग को क्या हो गया है। खुदा उनकी हालत पर रहम करे। मैं यहीं दिल्ली में हूँ, बहुत खुश हूँ। मैं ये खत पढ़ रहा था कि वली मोहम्मद आया। इसके पास तकी का एक खत था। मेरी तरफ बढ़ा, उसने कहा, ये खत तकी ने दिल्ली से अपने बाप को लिखा है, सिर्फ चंद अल्फाज हैं। मैंने पूछा, क्या? वली मोहम्मद ने कहा, पढ़ लीजिए। मैंने ये अल्फाज पढ़े, किबला वालिद साहब, मैं यहाँ खैरियत से हूँ। आपने मेरा घर आबाद किया है, मेरी ख्वाहिश है कि आप भी अपना घर आबाद कर लें। वली मोहम्मद ने आंखों का जाविया बदल कर अपनी नोकीली मूंछों को देखा और कहा, मंटो साहब, लड़का होशियार हो गया है, लेकिन मौलाना तो अपनी बात पक्की कर चुके हैं। कहाँ, वली मोहम्मद की मूछें थिरकी एक घी बेचने वाली से। पांचों उंगली घी में और सर कड़ाही में, मुहावरा ठीक इस्तेमाल किया ना मंटो साहब। मैं हंस पड़ा।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।